ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगनात् रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परेजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री श्री राधाकृष्णपादम्बुजसहगनात् ललिता श्री विशाखानितंश्च पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्त्यावतार भक्ताक्षं नमामि भक्तसक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकवदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत् प्रियकरौ करुणावतारौ। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यो छविसुन्दराय मात्मा प्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादे गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भज गोविन्द गोविन्द गोपाल भज गोविन्द गोविन्द गोपाल भज मुरली मनोहर नन्दलाल भज मुरली मनोहर नन्दलाल भज गोविन्द गोविन्द गोपाल भज मुरली मनोहर नन्दलाल भज भज मुरली मनोहर नन्दलाल
श्रीमद्भागवतम् सप्तम स्कंद दसवां अध्याय श्लोक नंबर 4
नंद था ते खिल गुरु नंद था ते खिल गुरु घटेत करुणात्मनः घटेत करुणात्मनः यस्ताशिषास्ते यस्त आशिषास्ते न सभृत्याः सवये वणिक् न सभृत्याः सवये वणिक् नान्यथा ते खिल गुरु घटेत करुणात्मनः यस्त आशिषवासास्ते न सभृत्यः स वै वणे
Thank you.
माताएं ट्रांसलेशन एंड प्रोपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। अन्यथा हे भगवान, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। दूसरी ओर जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ अधिक लाभ चाहता है वो आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता, वो उस व्यापारी की तरह ही है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। कभी कभी यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भक्त के पास या भगवान के मंदिर में किसी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए आता है। ऐसे व्यक्ति को यहां पर वणिक कहा गया है। भगवद गीता में आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी का वर्णन है। आर्त शारीरिक दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की सूचित करने वाला है और यथार्थी धन चाहने वाले को। ऐसे व्यक्ति अपने दुख को दूर करने या धन प्राप्त करने के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाने को बाध्य हो जाता है। उन्हें सुकृति का पुण्यवान कहा गया है क्योंकि वे दुख पड़ने या धन की आवश्यकता होने पर परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। बिना पुण्यवान हुए कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकता। भले ही ऐसा सुकृति कुछ भौतिक लाभ पा ले किंतु जो भौतिक लाभ का इच्छुक रखता है वो शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। जब शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वो उसके पवित्र कार्य के कारण नहीं अपितु भगवान की सेवा के कारण होता है। भगवान की सेवा करने पर व्यक्ति स्वतः पवित्र बन जाता है। अतएव शुद्ध भक्त अन्याभिलाषिता शून्यम होता है। उसे न तो भौतिक लाभ की इच्छा रहती है न ही भगवान उसे भौतिक लाभ का प्रलोभन देते हैं। जब भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। योग क्षेमम महाम्यहम। कभी कभी भौतिकवादी लोग भगवान को फल फूल चढ़ाने मंदिर में जाते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता से सीख रखा है कि यदि भक्त कुछ फल फूल अर्पित करता है तो भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पुत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति हि तदहम भक्त प्रभुत मश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्ती फूल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे ग्रहण करूंगा। इस तरह व्यवसायिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सोचता है कि यदि उसे फूल चढ़ाने मात्र से कुछ लाभ हो सके, जैसे कि उसे प्रचुर धन मिल सके, तो यह अच्छा सौदा हो। ऐसे व्यक्तियों को शुद्ध भक्त नहीं माना जाता क्योंकि उनकी इच्छाएं शुद्ध नहीं होती। अतएव भक्त होने का दिखावा करने के लिए मंदिर में जाने पर भी वे व्यापारी ही बने रहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम्। जब कोई भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तभी वो शुद्ध हो सकता है और उसी शुद्ध अवस्था में वो भगवान की सेवा कर सकता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनं भक्ति और उच्यते, यही शुद्ध भक्ति पद हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्त की कुछ परिभाषा बताया, पर जो भक्त अन्याभिलाषिता शून्य हो और शुद्ध भक्त की स्थिति में पहुंच चुका हो उसकी एक लक्षण शास्त्रों ने बड़ा सुंदर भाव से कहा। श्रीमद् भागवतन ने बताया, खम वायुम अग्नि सलिलम महिंच ज्योतिषि सत्वानि दृश द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंचि भूतम प्रणमेद्यनन्या। वो शुद्ध भक्त, खम शब्द का अर्थ है आकाश, खम वायुम जो वायु बहती है उसे वायुम, खंग वायुम अग्नि आग, खम वायुम अग्नि सलिलम, सलिल कहते हैं जल को पानी, सलिलम महिम च धरती माता, मही धरती, सलिलम महिम च ज्योतिषी ताराएं नक्षत्र ग्रह, सत्वानि दृशद्रुमादिन दस दिशाएं, और द्रुम कहते हैं बड़े बड़े पेड़ को जिनका उम्र हजार हजार साल होता है, पेड़ पौधे झरना इत्यादि को दर्शन कर करके वो भक्त ये सोचता है ये ठाकुर जी की कृपा है, इसी में ही गोविंद विद्यमान है, ये सोच करके वो सभी को नमन व प्रणाम करता है। शुद्ध भक्त विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणो गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिताः समदर्शिनः। श्री श्री राधा रास बिहारि भगवान की जय। जो विद्वान व्यक्ति है भक्ति के भक्ति में परिपक्व हो चुके हैं वो ब्राह्मण या वैष्णव, कुत्ते डॉग और हाथी, इन सभी में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गवि गाय, हस्तिनी हाथी, सुनी स्वान के कुत्ते, चैव सुनी चैव सोपाके च, सोपाक कहते हैं चंडाल को जो डॉग ईटर है, गाय वगैरह की चमड़ा को काटता हो वो सोपाक है, चंडाल है, उन सभी में भगवान के दर्शन करते हैं, किसी में शत्रुता और मित्रता की भाव नहीं लेते। और ऐसे ही जो शुद्ध भक्त है वो संसार की चरित्र को ठीक ठीक रूप से समझ चुका है और वो अच्छी रूप से जानता है। के ही रो ही नहीं रही वे नहीं ती भवरंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़िबे काल बले। ये जितने ही पिता माता भाई बंधु ज्ञाति कुटुंब सहोदर सभी मित्र वर्ग हैं ये सभी ये संसार रूपी रंगमंच में ड्रामा ही करते हैं, अभिनय करते हैं। जब इन सभी का अभिनय खत्म हो जाए तो उनको जाना ही पड़ता है। इसलिए हे भक्त, कोई रहा नहीं और कोई रहेगा भी नहीं, ये रंगभूमि मंच पर अभिनय खत्म हुआ, सभी को जाना पड़ता है। शुद्ध भक्त इसको अच्छी रूप से जानते हैं। तब ब्रह्म पुराण में ये संसार के चरित्र दिया। द्वैपायन मुनि व्यास देव जी बोलते हैं, एकः प्रसूयते विप्र एक एव हि नश्यति एकः स्तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्त दुर्गतिम् असहाय पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरु ज्ञाति संबंधी वर्गश्च मित्र वर्ग तथैव च मृतं शरीरमुसृज्य शुष्ककाष्ठ समं जना मुहूर्तमेव रोदित्वा ततजान्ति परांगमुखा। बड़ा सुंदर चरित्र द्वैपायन मुनि व्यास देव जी ने संसार की चरित्र को दर्शाया ब्रह्म पुराण में। एकः ए जीव, एकः प्रसूयते विप्र, प्रसूतिशाला मां की, मां जब संतान को जन्म देता है उस स्थान को प्रसूति गृह कहा जाता है। तुम अकेला ही जन्म लेता है, उस समय तो शरीर के ऊपर वस्त्र भी नहीं होता, क्या लेके हम आए हैं। एक प्रसूयते विप्र, तुम अकेला ही जन्म लेते हो और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करते हो। ये संसार रूपी नदी का दो ही किनारे हैं, एक जन्म और एक है मृत्यु। और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने ही सुख दुख है वो जीव अकेला ही उसको भोगता है। एक प्रसूयते विप्र एक एव हि नश्यति एक स्तरति दुर्गाणि, दुर्गाणि शब्द करता है कठिनाई, एक स्तरति दुर्गाणि कच्छत्वे दुर्गतिम, किंतु वो ये समझ बैठता है ये मेरे पिता है मेरे रक्षा करेंगे, मेरी जननी है वो मेरी रक्षा करेगी, मेरी पत्नी है मेरी सेवा करेगी, पुत्र है जब बूढ़ा हो जाऊं मेरे रक्षा करेगा, किंतु हे राजन हे जीव ये सत्य नहीं है। जब वो क्रिटिकल मोमेंट वास्तव में मृत्यु उपस्थिति होगा ये सब अलग है, तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। पत्नी दौड़ती हुई रोती हुई चौकाट तक आएगी, चौकाट के बाहर उसकी पैर नहीं है क्योंकि ये गृह लक्ष्मी है। जब गृह लक्ष्मी बहुत बाजारों में घूमे उसे पतन की आशंकाएं बढ़ जाती है। हमारे जगन्नाथ भाषा में एक कहावत है, घाट नाश करे झिपिरी पानी। जो तलाव में हम पानी भरने जाते हैं वो जो घाट है जिसमें जाकर के हम पानी भरते हैं, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए ना वो बड़ा खसड़ा हो जाता है, मतलब खिसक जाता है, पैर गिरते ही मिट्टी खिसक जाता है और व्यक्ति गिरने का बहुत चांसेस है। घाट नाश करे झिपिरी पानी, कूल नाश करे तीनी ठायाणी। कुल की जो बधुआ है, इस चरित्र में ठाकुर जी गीता में कहते हैं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूष्यन्ति कूल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्ट्वा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। जब कुल की लक्ष्मी आए पतित होने लगती है उससे वर्ण संकर की उत्पत्ति होता है, और पतन का एक मुख्य कारण है जब वो घर में समय कम बिताती हुई बाहर में बहुत समय बिताती है, वो खतरा का घंटी है। जब घर में रहती है, खुली हुई बाल, वही कपड़े दो दिन के, क्योंकि घर घर की परिवार वाली व्यक्ति है। पर जब बाहर जाने की बात आती है, लिपस्टिक लगा लेती है, काजल चढ़ा लेती है और फुसफुस दोनों लाग करके सभी के नाक को खींच लेती है, वाह कौन जा रहा है, वो खतरा है। उससे जो शुद्ध भक्ति की अनुकूल जाना चाहती ही वैष्णवी, उससे बचना चाहिए, नहीं तो भक्ति संभव नहीं है, भक्ति दूर चली जाती है। सो एक प्रसुवेते विप्र एक ही नश्यति एक स्तरती दुर्गा गच्छते कस्त दुर्गति असहाय पिता माता सुतो गुरु ज्ञाति संबंधी वर्गश्च मित्र वर्ग तथैव च। कोई व्यक्ति साथ नहीं देता। मृतम शरीरम उत्सृज्य, जिस प्रियतमा पत्नी से इतने ही स्नेह कर बैठा वो भी, और ज्ञाति कुटुंब परिवार वाले भी, भाई सुत पुत्र कंधे पर उठा करके सूखा हुआ लकड़ी के ऊपर डाल करके आग लगा देते। मृतम शरीरम उत्सृज्य शुष्क काष्ठ समम जना। फिर क्या करते हैं, मुहूर्तमीव रोदित्वा, थोड़े क्षण के लिए रो पड़ते हैं, मेरे पिताजी मेरे भाई मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, फिर हम अनाथ हो गए, क्या करें। मुहूर्तमीव रोदित्वा तो जानती परांग मुखा, फिर मुंह मुड़ करके चले जाते हैं, फिर दो दिन के बाद सारी बात भूल करके टीवी खुल के बैठ जाते हैं। ये संसार है। इसलिए महात्मा गोकर्ण कहते हैं पद्म पुराण में, महात्मा गोकर्ण जी ने जीव जगत के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया, देहे अस्थिमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादीसु सदा ममतं विमुंच पश्यनी सम जगत इदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषांजहि काम तृष्णम अन्यस्य गुण दोष चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितरां पिबत्वम। देह, ये जो देह है मानव शरीर है, अस्थि मांस रुधिर तीन चीज में बना है, हड्डी मांस मेद और खून से बना हुआ ये शरीर है। इसलिए इतना अभिमान क्यों करते हो, कभी भी इसकी पतन हो सकता है, बहुत कमजोर है। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्तम, इसके ऊपर जितना अभिमति शब्द का अर्थ है बहुत प्यार करते हैं, हम शरीर को सजाने में भी बहुत समय लेते हैं, उसे त्यागो। अभिमतिं त्यजत्तम जाया मतलब पत्नी, सुत पुत्र, जाया सुतादीसु सदा ममतंग विमुंच, ममता मतलब स्नेह, स्नेह दुखों का कारण है। नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम, आसक्ति के समान दूसरा दुख नहीं है और त्याग के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। इसलिए इस प्रकार की ममता आसक्ति, ये आसक्ति कैसा है ना, संसार सिंधु रूपेण मीन रूपेण मानवा जंजाल जाल रूपेण काल रूपेण धीवरा। यहां पर धीवर वो काल है, इटर्नल टाइम, और वो जाल को नेट को फेंकता है, जैसे पानी में धीवर कैवट क्या करता है, जाल फेंक करके मछली को पकड़ता है, ऐसे ही ये काल पुरुष नेट जब फेंकता है तो जो कच्चे हैं वो उसमें फंस जाते हैं। आसक्ति बहुत दुखों का कारण है। तो महात्मा गोकर्ण कहते हैं जे इसे त्यागो जाया सुतादीशु सदा ममतंग विमुंच, और क्या करो ना पश्य देखो, क्या देखो ना मृत्यु तुम्हारी ओर दौड़ दौड़ करके आ रही है, फिर भी तुम अनजान हो, आंखें खोलो अनुभव करो। देखो पिताजी चले गए, महाभारत में यक्षराज ने ये प्रश्न पूछा महाराज युधिष्ठिर से, सभी पांडवों से पूछा। पांडव अपनी दूसरे जो भीम अर्जुन अपनी अहम में थे, उत्तर नहीं दिए, पहले पानी पी लिए, उन सभी की मृत्यु हो गई। और युधिष्ठिर महाराज जब भ्राताओं को नहीं देखा तो सरोवर में पहुंचे और यक्षराज यमराज स्वयं यक्ष के रूप धारण करके बैठे हुए थे। पहले देखो सभी भाइयों की मृत्यु हो चुका है, अब तुम सबसे बड़े हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर पानी पियो। तो यक्षराज ने बहु प्रश्न में से एक अनोखा प्रश्न रखा, किमाश्चर्यम्, हे युधिष्ठिर ये बताओ संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से यक्षराज को यह प्रश्न दिया, अहन्यहने भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरोत्तम इच्छन्ति किमाश्चर्य अतः परम। हे यक्षराज संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह हुआ, हमने देखा हमारा पिताजी चले गए, माताजी चले गए, दादा चले गए, परदादा चले गए, सब चले गए, पर ये अनुभव नहीं हो पाया कि हमें भी एक दिन जाना है या जाना पड़ेगा। ये कथा तो उसी स्लॉटर हाउस के समान है जहां पर एक गाय कटती है और दूसरे गाय हरियाली घास चुभाती है, उसे पता नहीं नेक्स्ट उसी का ही बारी है। ये संसार उसी प्रकार है, इसलिए ये सबसे बड़ा आश्चर्य का कारण है। तो पश्य देखो, पश्य नीशम जगत ईदम दिन और रात, यही बात को अनुभव करो, पश्य नीशम जगत ईदम क्षणभंग निष्ठम, ये संपूर्ण जगत क्षणिक है। संसार उसी का नाम है जो हर पल खिसकता है, परिवर्तनशील है, एक पल में जो है दूसरी पल में नहीं है, एक पैर गिरे पदम पदम विपदाम, एक पैर के बाद दूसरी पैर फिसलेगा कि रहेगा क्या मालूम। हमारे भक्त एक कीर्तन कर रहे थे, पैर गलत गिर गया, चलना मुश्किल हो गया, क्या उनको मालूम था आज पैर ऐसे हो जाएगा, नहीं। इसलिए जागृत रहो, देखो पश्यनीशम जगत ईदम क्षणभंग निष्ठम, ये पल पल बदलता है, क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको, विराग विद्या की अभ्यास करो। 2000 ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य जीवन में जो है बृहत व्रत को जो अपनाया है, जो व्यक्ति कौपिन धारण करता है वो ये विद्या को अगर सीखे, शुद्ध भक्त के लाइन पर चले, वो कैसे चित्कार करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, ना का करावी बकध्यायी स्वान निद्रा तथई वच अल्पहारी गृहत्यागी एतद् विद्यांच लक्षणम, ये विद्या के लक्षण है। का करावी कौवा जैसे चित्कार करके वेदों को श्लोकों को पढ़ना चाहिए, जितना उच्चारण करके जोर पढ़ोगे वो ब्रेन के ऊपर इतना ठीक बैठेगा, और धीरे धीरे पढ़ोगे सारा जीवन में एक श्लोक नहीं बैठेगा। उच्चारण करके का करावी कौवा जैसे का इस प्रकार का करावी बकध्यायी, जैसे बगुला एक पैर में खड़े होकर के पानी के अंदर मतलब निहरता रहता है, कब मछली गुजरे वो पकड़ लेता है, ऐसे ही पूर्ण ध्यान से, ध्यान भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। का करावी बकध्यायी स्वान निद्रा, जब तुम सोओगे कोई चुटकी भी बजाए नींद खुल जाना चाहिए। अखंड भोजन करके सो गए घुंघड़ी चलेगी, और कोई पुकारे फिर भी नींद नहीं है, फिर भी उठना मुश्किल है। अल्पहारी, और आयुर्वेद ने यह बताया पेट की आधा भाग भोजन में होना चाहिए और एक भाग पानी में होना चाहिए और एक भाग वायु के लिए होना चाहिए। ऐसे जब व्यक्ति भोजन करे वो बड़ा सुस्त जीवन बिता सकता है, और आखंड भोजन शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए भर भर के ठूस ठूस के खा लेना। राबड़ी भगवान तो कर सकते हैं, पर हम जीव तत्व में जब आते हैं थोड़ा संभाल के, 35 साल के बाद सभी को प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए थोड़ा संभाल के पहले चलेंगे तो दीर्घायु हो सकते हैं। तो पश्चानी सम जगत ईदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको विराग विद्या। विराग वैराग्य दो प्रकार की है, फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य। जो कुछ ठाकुर जी ने दिया है उसको लेके गोविंद के साथ चलेंगे, पत्नी भी बच्चे भी घर भी सब, वो युक्त जोड़ करके हम ठाकुर जी की ओर दौड़ते हैं, ये युक्त वैराग्य है। और फल्गु वैराग्य माता सीता जी ने अभिशाप दिया था, ऊपर में रहती है फल्गु नदी में, ऊपर में रहती है वो नीचे पानी है, क्या फायदा। ऐसे फल्गु वैराग्य, और सबसे फल्गु वैराग्य की उदाहरण वानर है। वानर वस्त्रहीन है, कपड़ा नहीं पहनता, सर्दी और गर्मी में छलांग मारते रहता है, और शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, बहुत अच्छा। फिर भी श्रीमद् भागवत ने बहुत निंदा किया वानर का, क्योंकि बहुत सेल्फिश है, शुद्ध नहीं है। अगर अपने खून से एक पुत्र को उसने जन्म दिया, वो पुत्र को ढूंढ ढूंढ के मार डालता है, ताकि जो वानरी को और कोई ना भूगे, केवल मैं हूं भोग करने के लिए, पुत्र जन्म लिया मार डालेगा। ऐसे वैरागी बन के क्या फायदा, ना वो वैरागी नहीं, युक्त वैराग्य। विराग विद्या को डिटेचमेंट फ्रॉम द मेटेरियली, मेटेरियल भौतिक जगत की जो वासनाएं इच्छाएं कार्य हैं उससे मुक्त रहना, विराग विद्या। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, भक्ति में निष्ठापन्न रहो और भक्ति जीवन को बिताओ। भक्ति कोई अलग वस्तु नहीं है, जो कुछ करते हो थोड़ा उसको बदल दो। भोजन करते हो, भोजन से पहले नैवेद्य को ठाकुर जी के सामने रखो, एक तुलसी दल डालो, प्रणाम करो, बोलो ठाकुर जी तुम्हारी चीज है आप इसको स्वीकारो, फिर भोजन करो, वो भक्ति हो गया। बिना ठाकुर जी के सामने रखे खा लो, केवल भुंजन्ते ते तो गंग पापा, हम केवल पाप भी भक्षण कर लिए तो शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे। शुद्ध भक्त संसार के चरित्र को ठीक ठीक से समझ रखा है, तभी तो शुद्ध भक्त में अभिलाषा नहीं रखता संसार के प्रति। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, भक्ति में स्थिर रहना चाहिए व्यक्ति को, भव भक्ति निष्ठ, भव भक्ति निष्ठ। सेवस्य साधु, और साधु का संग करना चाहिए, सेवा साधु की करना चाहिए। क्यों, क्योंकि साधु वो सदगुरु एक ऐसी महान पुरुष जीवन में संग देते हैं। देखो जब हम लोग ड्राइविंग क्लास लेते हैं गाड़ी चलाने के लिए रोड के ऊपर, तो पहली बात होता है तुम्हारी जो सीट है उसको तुम देखो, तुम कितने ऊंचे में हो, कितने नीचे हो, सामने किस प्रकार देखते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैक व्यू मिरर, जो ड्राइवर सीट के ऊपर लगा होता है जो मिरर, उसको बैक व्यू मिरर करते हैं, पीछे क्या हो रहा है तुम सामने देख सकते हो, और राइट साइड मिरर और लेफ्ट साइड मिरर उसको ठीक करो। किंतु आज तक जो बैक व्यू मिरर है वो टेढ़ा बैठा है, सेट नहीं हुआ है, तो केवल माया दिखती है, केवल संसार दिखती है। पर जब जीवन में सत्संग करते हुए भक्ति को अभ्यास करते हुए जब सद्गुरु जीवन में उतरते हैं वो पहले ये मिरर को सेट करते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पणमार्जनम। तो ये मिरर को जब वो ठीक जगह पर सेट करते हैं तो दोनों तरफ दिखता है, संसार है और एक गोविंद की चरण है। एक बार जीव को निर्णय करना है वो किसकी ओर भागे, किंतु अब तक हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम गोविंद को कभी देखा नहीं, दिखता ही नहीं है, वो केवल संसार के प्रलोभन देखता है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि इत्यादि में पड़े रहे हैं। पर वो संग सदगुरु वैष्णव की संग से ये मिरर सेट हो जाता है, तब गोविंद की पूजा उपासना करने में क्या लाभ है और भौतिक संसार में जीने और वासना में क्या लाभ है हमको क्लियर दिखाई पड़ता है। फिर चॉइस हमारा, हम क्या करें नहीं करें। सेवस्य साधु पुरुषांज ही काम तृष्णाम काम नित्य वैरिण्यम। साधु के लिए एक एक शत्रु है काम, पर बोलते हैं सेवस्य साधु, साधु की सेवा करने से क्या होता है ना, पुरुषांज ही काम तृष्णाम काम रूपी तृष्णा। ये तृष्णा किसे कहते हैं, मृग मरीचिका को। तृष्णा का नाम है मरीचिका, मृग मरीचिका। शास्त्रों में प्रमाण है जैसे मृग पानी को तलाशते हुए जब मरीचिका मतलब है मरुभूमि में पड़ता है तो वायु उड़ती है और उसके साथ धूल भी उड़ता है और वो ऐसे इमेज क्रिएट करता है और हिरण ये सोचता है पानी वहां बहता है तो दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है, तो इतने ही दूर फिर वो मरीचिका भाग जाता है, फिर दौड़ता है और दौड़ता है, गर्मी में सड़ते सड़ते छटपटाता हुआ मृत्यु हो जाता है। ऐसे ही मानव की स्थिति है, एक इच्छा को पूरा करने के बाद 10 इच्छाओं की उत्पत्ति होता है, फिर उसको पूरा करो उसको पूरा करो उसको पूरा करो, कब जे चला गया पता ही नहीं चला। जौवनम कुसुम समम, ये जौवन फूल के समान है, आज जवानी है 10 साल के बाद जवानी टल जाता है, फिर आंखों में दृष्टि शक्ति की कमी होती है, पेट में पाचन शक्ति की कमी आ जाती है, फिर व्यक्ति क्या करे, फंस जाता है, पता ही नहीं कब उम्र चला गया पता ही नहीं है ना। इसलिए सेवस्य साधु पुरुषांज ही काम तृष्णम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे की अवगुण देखते हुए, दूसरे की अवगुण जो देखता है उसमें देखते 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 अवगुण कितने जे अवगुण अपने शरीर में आ चुके हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे भक्त होने के कारण यदि अवगुण देखोगे तो चंद्रमा भी अवगुण है, एक काला धब्बा है चंद्रमा में तो वो जो वृत्ति है वो भक्ति बाधक है। पर ये शब्द का अर्थ नहीं है, हमारे जो अथॉरिटी वर्ग है अगर मंदिर के अंदर कोई सांप घुसा है, कोई बोले सांप घुसा है और हम बोले ना ना कोई तकलीफ नहीं है हम अहिंसावादी है सर्प को नहीं निकालो ना, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। परंतु सेवस्य साधु पुरुषांज ही काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितरांग पिवत्तम, भगवान की सेवा भगवान की कथा भगवान की कीर्तन सुनते कीर्तन करते हुए सुखी जीवन बिताना चाहिए, इससे कोई शंका नहीं है। और इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने नवम अध्याय की एक श्लोक की व्याख्या किया, शुद्ध भक्त के चरित्र में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति ही तदहम भक्ति प्रभुत मश्नामि प्रयतात्मनः। हे प्रतापुत्र अर्जुन, यदि कोई मुझे एक तुलसी की दल थोड़ी सी जल और एक फूल भी भक्ति पूर्वक अर्पण करता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। इस चरित्र में महाभारत में एक सुंदर चरित्र आता है, प्रेम नहीं है तो भगवान भी नहीं है, और प्रेम से थोड़ा पत्ता और फूल भी चढ़ाओ भगवान स्वीकार करते हैं। एक दिन की कथा ऐसी हुई, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया। दुर्योधन ने कहा, गोविंद सभी जगह पर बड़े बड़े भोजन करते हो, आज मेरे घर में भोजन करो, बहुत सुंदर भोजन बनाऊंगा। 56 प्रकार की व्यंजन बना करके दुर्योधन, महा अभिमानी दुर्योधन, आज बना के ठाकुर जी के रखा और कृष्ण भगवान को बोला मेरे घर आज भोजन करने आओ। आज भगवान जा रहे थे, दुर्योधन की ओर जा रहे थे, रास्ता में विदुर जी की कुटिया आ गया। भगवान भक्त वत्सल है, भक्त सेवक है। विदुर जी ने जब देखा भगवान कृष्ण जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हाथ जुड़ करके ठाकुर जी को बहुत विनती किया, बोला हे ठाकुर जी आप कृपा करो, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो, थोड़ी सी। भगवान भक्त को ना करके चले जाए भगवान से नहीं होता। भगवान की पैर विदुर महाराज जी के घर मुड़ गया और भगवान विदुर जी के घर पहुंचे, और जब विदुर ने देखा भगवान चतुर्दश ब्रह्मांड के नायक आज घर पधारे हुए हैं, और विदुर जी ने दोनों हाथ को जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि मां सनंगते गरुड़ासनाय किं भूषणं कौस्तुभो भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम् बागीशकन्ते वचनम किमस्ति। हे ब्रह्मांड के नायक, जिसके आसन गरुड़ का पृष्ठ देश है, पीठ पर आप चतुर्दश ब्रह्मांड भ्रमण करते हो, उससे बढ़कर के ये कुटिया में कौन सी बड़ी आसन है जो आपको दे करके मैं बैठा हूं। ठाकुर जी क्षमा कर दीजिए, ऐसा बड़ा आसन मेरे पास नहीं है। किमासनांग ते गरुड़ासनाय किं भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, नहीं तो कोई एक आभूषण दे करके आपको मैं खुश करता। हे ठाकुर जी, जिसके गले में वैजयंती माला कौस्तुभ मणि विद्यमान है, उससे बढ़कर के और कौन सा माला मैं आपको दे सकता हूं। किमासनांग ते गरुड़ासनाय किंग भूषणं कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय। कलत्र कहते हैं पत्नी को, जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी देवी है, उसको मैं क्या धन दे करके थोड़ी सी खुश करूं, उससे बढ़कर के धन तो मेरे पास है नहीं ठाकुर जी। सो लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम् बागीशकान्ते वचनम किमस्ति, नहीं तो थोड़ा सुमिष्ट वाणी से आपकी स्तुति स्तव गाता तो आपको मैं खुश करता। पर ठाकुर जी, जिनकी पत्नी स्वयं बागदेवी सरस्वती है, उससे बढ़कर के वाणी मेरे पास नहीं है। विदुरो भ्रष्ट चेतना, विदुर जी आनंद से इतने अधीर हो गए, प्रेमाश्रु आंखों में भर करके भगवान की चरण में प्रणाम किए और आंसू के दो बूंद ठाकुर जी के चरण में गिर पड़े, और भगवान अतीव प्रसन्न हुए। और घर में कुछ नहीं था, विदुरानी को बुलाए, विदुरानी एक वो भी पका हुआ बहुत सड़ा हुआ एक केला दे दी ठाकुर जी को, भारत सावित्री। तो ठाकुर जी को देख करके विदुर जी इतने प्रसन्न थे, उनको ये भी पता नहीं चला, वो केले की छिलका को तो खुले पर केले को फेंक दिए और छिलका को खिला दिए, ठाकुर जी उसे खाए। किसी किसी जगह में वर्णन है, साक नान्यपि भोजनम, ठाकुर जी ने शाक खाया विदुर जी के घर में। पर भारत सावित्र में इसे वर्णन है, ठाकुर जी ने केले की छिलका खाया। और ये बात तो दुर्योधन को पता चला। दुर्योधन की आंखें बड़े बड़े क्रोध में भर गए और विदुर के घर से भगवान दुर्योधन के घर पधारे। दुर्योधन जब ठाकुर जी को देखा, बड़े क्रोध भरे शब्द में भगवान कृष्ण को कहा, भीष्म द्रोणोपरी तज्जम मांचैव मधुसूदन किमर्थम पुंडरीकाक्ष कृतम वृषणी भोजन। हे कृष्ण, ये बताइए, महामानी राजा दुर्योधन का परित्याग करके, गुरुवर द्रोण को परित्याग करके, पितामह भीष्म को परित्याग करके, आपने एक दासी पुत्र के घर में क्या खाया? ठाकुर जी को ये बात बहुत लगा। कर्कश शब्द में, कठोर शब्द में दुर्योधन ने भर्त्सनात्मक शब्द में भगवान को कहा। भगवान की हृदय बहुत दुखी हुआ। भगवान दुर्योधन को उत्तर दिए। उत्तर में भगवान कहते हैं, भोजनम पृच्छसि राजन आदरं किं न पृच्छसि। भोजनम गत जीर्णंश्च आदराश्च जरामरः। हे दुर्योधन महामानी, लक्ष्मी देवी मेरी पत्नी है, अगर अभाव होता खाने की तभी तो आपके घर आता, खाने की अभाव नहीं है। नहीं तो आपको देख करके कुछ प्रभाव बन जाता। कभी हम जाते ना, किस चीज को देख करके हमारे मन में वो आ जाता, ऐसी चीज मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभावित हो जाते। ऐसे कौन गुण तुम्हारे पास है जिसको देख करके मैं प्रभावित बन जाऊं? भोजनम पृच्छसि राजन, राजा तूने भोजन को पूछा क्या क्या खाया, पर ये तो नहीं पूछा किसी भाव से खिलाया, मैं भाव का भूखा हूं। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किं नाम रूप अधिकं किं तत सुदाम्नो धनम वंशकः विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न तु गुणे भक्ति प्रियो माधव। माधव भक्ति के भूखे हैं, पर ये तो नहीं पूछा किस भाव से खिलाया। खाने के बाद व्यक्ति का वो भोजन मल में बदल जाता है, उसको त्यागना पड़ता है। किंतु हे राजा दुर्योधन, जिस भाव से, जिस भक्ति से विदुर ने मुझे खिलाया, वो अजर और अमर है, उसकी तुलना तुम नहीं कर सकते। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति भक्ति प्रहुत मश्नामी प्रयतात्मनः। हे पृथा पुत्र अर्जुन, प्रेम से, भाव से, भक्ति से यदि कोई एक तुलसी की दल भी मुझे अर्पित करे, ये थोड़ा सा जल भी अर्पित करे, एक फूल भी अर्पित करे, मैं बड़े प्रेम से उसको स्वीकारता हूं। हरे कृष्ण बोलो। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री नितय गौर सुंदर भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था।
यस प्रभु।
आपने जैसे बताया कि भक्त का एक लक्षण है कि उसे दुर्गुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो ध्यान देते देते वो उस पर भी आ जाते हैं। तो कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हम बाहर जाते हैं तो बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो दुर्गुण से पूर्ण रहते हैं, तो उनको प्रचार करने से उनके गुण का प्रभाव होगा हमारे ऊपर, या उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब उस परिस्थिति में कैसे?
देखो, मधुमक्खी जब फूल के ऊपर बैठ करके मधु शोषण करता है, कभी कभी वो मधु बहुत चिटकिलापन होता है, उसमें स्टिकीनेस होता है, और उसकी दो पंख जब उड़ उड़ के वो मधु श्वसन करता है, अगर किसी ना किसी प्रकार से अगर थोड़ी सी मधु उसकी पंख में लग जाए वो वहां चिपक जाता है, फिर तड़पता हुआ प्राण को त्यागता है। संसार बहुत अच्छा है, प्रचार करना बहुत अच्छा है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो श्रील प्रभुपाद जी की हृदय है, बृहत मृदंग है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सबको करना चाहिए, किंतु प्रचार के समय ये ध्यान रखना चाहिए, अपने को बचा करके प्रचार करना चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े प्रचारक व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर बैठे, समझ में आया? स्पेशली जब हम अपोजिट शरीर से बात करते हैं, हंसते हैं, हासो स्थितम दर्शनम अक्षि युग्मा, ये तो ब्रह्मचर्य क्लास है इस श्लोक में, हासो स्थितम दर्शनम अक्षि युग्मा मत्युज्ज्वलम यत कलुषम बसाया कुचादि पीनंग पिशितम घनंग स्तानंग रते किंग नरकंग नजोषित। इसकी व्याख्या करना आवश्यक नहीं है, कभी मौका मिले ब्रह्मचर्य जीवन में क्लास में इसकी वर्णन करूंगा। परंतु अंतर ये है, जब हम प्रचार में जाते हैं, प्रचार करना अच्छा है, अवगुण तो है, भौतिक जगत में गुण कहाँ है, अवगुण भरा है भौतिक, और भक्त ही उनको प्रचार करके, उन सभी में प्रचार अगर नहीं होता तो आप और हम इस मंदिर में कैसे आते? प्रचार चाहिए, पर प्रचार भी अपने को बचा करके करना चाहिए, ये बात पर ध्यान रखना। नहीं तो कभी कभी बड़े बड़े भक्त भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं प्रचार करते करते। हमने देखा हमारी एक बहुत बड़े पढ़ा लिखा न्यू भक्त आए, और उस समय ये सूरदास प्रभु भी एडिटर बनने के लिए आए हुए थे, और उन दिनों की ये बात है, और गोपाल कृष्ण महाराज जी ने मुझे कहा, नरसिंह चैतन्य देखो और ये व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, अब उसको वो न्यू भक्त में डाल दो कहते क्या इसे चलेगा, हो सकता है मंदिर छोड़ के चला जाए, तो आप एक काम करो उसको थोड़ा अच्छा से देखभाल करना। मैं कहा गुरु महाराज मैं तो ब्राह्मण लड़का था, जब आया 6 महीना तो सबका टॉयलेट सफाई किया, रो रो के आपके पास आया, आपने मुझे बोला मंदिर छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो मैं तो चले जाने वाला था। तो आप एक भक्त पढ़ा लिखा तो इसीलिए थोड़ा अलग, बोले नहीं नहीं फिर भी थोड़ा मंदिर छोड़ के वो जाए नहीं ये देखना। तो मैं देखा वास्तव में बहुत पढ़ा लिखा, और थोड़े दिन में इतना चरम फूल प्रचार करने लगा कल्पना से बाहर, और श्रीधर स्वामी जी ने उनको बड़ा एक बस दे दिया, कॉलेज प्रचार करो, कॉलेज प्रचार किया 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 और प्रचार किया, प्रचार कैसे किया कैसे किया, और प्रचार करते करते एक दिन एक एक लॉयर के घर में प्रचार प्रारंभ किया, और लॉयर जी वो वकील जी देखते रहे क्या प्रचार हो रहा है, और लॉयर की जो पत्नी है वो सामने बैठ करके बड़े बड़े आंखों में तन्मयता से प्रचार को खाली पी रही थी, प्रचार की पीना आंखों से ऐसे पिया ऐसे पिया, और उनके के पुत्र भी था, और उन्होंने क्या किया अंत में अपनी स्थिति को भूल करके माता से शादी किया, और माता ने अपनी पत्नी को छोड़ दी, बच्चे को लेकर के हरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल हो गया। तो इसी प्रचार की क्या जरूरत है, घर भी टूटा, बच्चे भी गया, मंदिर भी गया, भक्ति भी गया, लाभ क्या हुआ ना? अपने को बचा करके, यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो सबसे अच्छी बात उसकी मदद कैसे करोगे, छलांग मार के पानी में कूद जाओगे? गलत, ऐसे बचाव नहीं करना, क्योंकि जो व्यक्ति पानी में डूबता है वो किसी का सहारा ढूंढता है, आप गिरते ही वो आपको पकड़ लेगा, आपकी ताकत वहां खत्म हो जाएगी, वो छोड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि वो मर रहा है। अगर आपके पास कोई वस्त्र है, कुछ रस्सी है, उसको पहले फेंको, वो पकड़े खींच लो, बचाना है, पर कूद जाओगे तो स्वयं मरोगे वो भी मरेगा, ऐसे प्रचार नहीं चाहिए। अपने को बचा करके जो सिद्धांत है सिद्धांत के अनुकूल प्रचार करना हा? और यहां प्रश्न आया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा सिद्धांत सुनिते ना करियो आलस, जहां पर सिद्धांत की चर्चा हो कथा कीर्तन हो, आलस करी ले तुम्हें कुथा पावे रस, जो लोग ये कहावत है ना, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। जहां पर सिद्धांत की चर्चा हो, कष्ट बेशक हो, तन्मयता से श्रवण करना और उसको पालन करने के लिए भी प्रयास करना। आलस्य को त्याग करके प्रचार करना चाहिए, परंतु स्वयं को बचा करके प्रचार करना चाहिए, ना डूबता हुआ व्यक्ति के ऊपर छलांग मार दो और उसको पकड़ के खींचो, तुम भी जाओगे वो भी जाएगा, जैसे कि दृष्टांत मैंने दिया। हाँ, वो किंग विद्या, किंग तपसा, किंग त्याग, किंग श्रुति नगा, किंग विविक्ति न मौने न स्त्री भीजस्य मनोहूतम। हाँ, किंग विद्या, वो बड़े बड़े श्लोक पढ़ने का क्या फायदा हुआ, वो मौनाव्रत का क्या फायदा हुआ, वेदा अभ्यास का क्या फायदा हुआ, किंग विद्या किंग तपसा, वो त्याग का क्या फायदा हुआ। हम जब न्यू भक्त थे, हमारे के डायरेक्टर थे, और वो डायरेक्टर कभी भी भूमि पर उल्टा होकर नहीं सोते थे, मातृहरण दोष लगता है, वो हमेशा ऐसे सोते थे, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर, नीचे नहीं सोते थे। और जब प्रसाद नहीं होता था, वो हमारे न्यू भक्त जो जब प्रसाद रूम में प्रसाद खा करके गार्बेज में फेंका जाता था, वो गार्बेज से उठा करके, प्रभु जी आप उस समय थे, वो गार्बेज से उठा करके प्रसाद खा के अपने पेट भर के फिर कीर्तन करने जाते थे। और उनको गिरिराज स्वामी जी ने कहा, जे देखो तुम थोड़े पढ़े लिखे हो और हिंदी भी जानते हो, पाकिस्तान जाओ प्रचार करो। तो पाकिस्तान जब गए तो गिरिराज स्वामी ने एक मनमोहनी को कहा, जे देखो तुम भी थोड़ा जाओ, थोड़ा प्रचार करो। तो मनमोहिनी जी भी उनके साथ गए और पाकिस्तान में प्रचार करते हुए कितने कष्ट आए, पर बास वृंदावन बिहारी जय जय राधे, विवाह कर बैठे। पर वो कैसे सोते थे, ऐसे हो गया, विवाह पतन नहीं है, नहीं नहीं, हमारी मां है, अगर हमारी मां हमें जन्म नहीं देती तो फिर ये ठाकुर जी को कैसे देखते। मैं किसी माता वर्ग की यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं ना, पर शब्द का अर्थ है जो ध्येय है वो तो खो गया ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो फिर फायदा क्या हुआ। वहां पर सेल्फिश होना, अपने को बचाना, फिर दूसरे की उद्धार करना, अपने आचरी फिर दूसरे का। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। अपने जन्म को पहले सार्थक करो, फिर दूसरों की सार्थक करने के लिए प्रयास करो। अपना कुछ है नहीं दूसरे का, वो होगा नहीं। हरि बोल।